ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए जो महाराज जी ने पांच बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन पर गंभीरता से अमल करना ही पड़ता है। उसके बिना आदमी इस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकता है। लेकिन वो पांच नियम पालन करने में बाधाएं तो आएंगी। अब सबसे पहली बाधा तो हमारे अपने ही स्वभाव की है, अपनी आदतों की है। महाराज जी सादगी की बात कर रहे हैं, यहां से प्रारंभ है अध्यात्म का। क्योंकि मनुष्य जो बेचैन है संसार में, वो अपनी इच्छाओं के कारण है। जरूरतें तो हर मनुष्य की हैं, खाने की जरूरत है, पहनने की जरूरत है, रहने की जरूरत है, जरूरतें हैं। लेकिन आप देखिए, जितने भी मानसिक क्लेश हैं मनुष्य के जीवन में, गृहस्थ जीवन में या सामाजिक जीवन में, ज्यादातर वो जरूरतों के कारण नहीं है, वो इच्छाओं के कारण है। चाहे पॉलिटिकल फील्ड देख लीजिए आप, वहां भी इच्छाओं की लड़ाई है। घर का जीवन देख लीजिए, या आपके रिश्तेदारी हो, पड़ोस हो, कुछ भी हो, जहां जहां आपका फैलाव है, हर जगह देखिए, जब मन मोटा होता है तो इच्छाओं के कारण होता है, आवश्यकताओं के कारण नहीं होता। इसीलिए बेसिक चीज तो हमें यह समझनी है कि अध्यात्म मार्ग पर मैं चलना क्यों चाहता हूं। बेसिक चीज तो यहां खड़ी है ना। तो उसके लिए सब कुछ कहते हैं कि संसार दुख रूप है। हमको समझ ही नहीं आता कि संसार दुख रूप कैसे है। वो कहता है कि संसार तो सुख रूप है, लेकिन मुझको सुख नहीं मिल रहा है। मेरी सोच तो यहां खड़ी हुई है कि संसार तो सुख रूप है, लेकिन मुझको सुख नहीं मिल रहा है। इसीलिए उसके जो सुख के मापदंड बना रखे हैं, उसने जो स्टैंडर्ड बना रखे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्टैंडर्ड बनाता है। अमीर घर में कोई बालक पैदा हो जाए तो शुरू से ही वो स्टैंडर्ड बना लेगा, बड़ा होगा। अच्छा, कार सबके पास है, कम से कम मेरे पास होंडा सिटी तो होनी चाहिए। मोबाइल सबके पास है, कम से कम मेरे पास आईफोन तो होना ही चाहिए। स्टैंडर्ड बचपन से ही देखा देखी आदमी बना लेता है, कहता है इसमें सुख है। उसको यह पता नहीं कि जैसे ही तूने स्टैंडर्ड बनाया, तेरा दुख प्रारंभ हो गया। चिंता, जलन, ईर्ष्या, द्वेष सारे प्रारंभ हो गए। सबको देख देख के तो परेशान होता रहेगा, जलता रहेगा, और अंदर उस कल्पना को स्ट्रांग करता रहेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे मिलना ही चाहिए। तो विचार करके देखो कि एक फ्लैश है, वो भी नकल करके तो है। इसकी तूने देखी नकल करके, ये तो सबके पास है, इससे बेटर मेरे पास होना चाहिए। फंस गया वहां, ये सोच नहीं रहा कि आवश्यकता मेरी क्या है। यदि आवश्यकता जो है वो पूर्ण होनी चाहिए, ये बात तो समझ में फिर भी आती है। कोई बिजनेस मैन है, उसको मोबाइल चाहिए बिजनेस करने के लिए, वो तो जरूरत है उसकी। लेकिन जिसने शौक पूरा करना है, देखा देखी जिसने हाई क्वालिटी का और हाई स्टैंडर्ड का चाहिए, बड़ा कीमती चाहिए, तो वो तो उसकी वासना है। इसीलिए एक आइटम नहीं, बचपन से लेकर ओल्ड एज तक हजारों आइटम आपके सामने आते हैं, और हर मामले में आप यही करते हैं। देखा देखी अपनी जो है स्टैंडर्ड बना लेते हो, और वो आपकी जो वासना है वो फैलती जाती है, इच्छाएं फैलती चली जाती हैं। तो ऐसी हालत में आप ईश्वर की याद कैसे करोगे, बताओ। कैसे तो छोड़ो, क्यों करोगे आप? ईश्वर तो कोई इच्छा पूरी करने वाला है नहीं। आपके दुनिया में मान लिया 10,000 इच्छाएं हैं, तो ईश्वर आपकी उसमें से एक भी इच्छा पूरी नहीं करेगा। ईश्वर का काम ही नहीं है। आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटेगा जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो सारा का सारा आपका प्रारब्ध होगा। उस प्रारब्ध के अनुसार आपके शरीर को और आपके संसार को ईश्वर चला रहा है। ये काम तो ईश्वर कर रहा है, बिना उसकी शक्ति तो संसार चलेगा ही नहीं। ना आपकी देह चलेगी बिना उसकी कृपा की, ये काम तो वो कर रहा है, लेकिन आपकी इच्छाएं जो पूर्ण करने का सिलसिला है इसमें वो सहायक नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार सारा चक्र वो चल रहा है, उसका विधान है, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं जो आपको परेशान कर रही हैं इसमें उसका कोई रोल नहीं। इससे आपने ही लड़ाई लड़नी है, और इसी के लिए वो संसार में गुरु रूप धारण करके आता है। किस वास्ते आया बताऊं? जब ये जीव परेशान होता है उसकी परेशानी से उसको मुक्त कराने के लिए ही तो वो धरती पर आता है अवतार बनकर, गुरु बनकर। नहीं तो उस ईश्वर को क्या आवश्यकता है बताओ? तो गुरु का संसार में आगमन मेरे जो मानसिक क्लेश हैं उन मानसिक क्लेश से मुझको मुक्त कराने के लिए उसका आगमन संसार में हुआ है। तो यदि उसी की बात मैं ना मानूं, उसी पर मेरी श्रद्धा में कमी हो, तो फिर मुझको संसार में कौन परेशानी से बचा सकता है? जीवन प्रारब्ध के अधीन है, परेशान आपकी जो है इच्छाएं कर रही हैं आपको, मानसिक सोच कर रही है परेशान आपको। तो इस मानसिक सोच को बदलने के लिए ही जब आप तैयार नहीं है, केवल संसार के निकल करके चलना चाहते हैं, तो पूरी जिंदगी परेशान रहना है, दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है आपका। आपकी बीमारी फिर संसार में लाइलाज। तो यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर मार्ग पर चलना चाहता हूं, हम सारा ज्ञान भी सुनते हैं परंतु क्या करें कि चल नहीं पाते, तो इसमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। तो आपको यही पता लगेगा कि मैंने जो इच्छाएं पाल रखी हैं अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, जो भी इच्छाएं जिसने जैसी पाल रखी, उन इच्छाओं की आप पूर्ति चाहते हैं, ईश्वर पर निर्भर होकर आप चलना नहीं चाहते। तो इस मार्ग पर केवल वह व्यक्ति चल पाता है और सफल हो पाता है जो पहले इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि संसार में मेरी अपनी ही इच्छाओं के कारण मेरे अंदर मानसिक क्लेश पल रहे हैं और सांसारिक तरीके से इनका कोई इलाज संभव नहीं। इसीलिए गुरु के जो 5 नियम हैं, और गुरु प्रारंभ जो कर रहा है वो सादगी से कर रहा है। अब सादगी का महत्व यहां आके पता लगता है कि वो सादगी की बात क्यों कर रहा है। यदि ये बेसिक फंडामेंटल ही हमने नहीं समझा तो बाकी अध्यात्म हमारा क्या किस मतलब का होता है? बड़ी बड़ी बातें करना अध्यात्म की, बड़ी गहरी बातें सुनने की कोशिश करना, उसका फायदा क्या है? इसका तो कोई फायदा ही नहीं। क्योंकि जो हमको बीमारी है, जिस बीमारी के इलाज के लिए हमने गुरु बनाया है और प्रभु ने गुरु रूप में अवतार लिया है, वो बीमारी तो हमारी इच्छाओं की है ना, कि हमने गैर जरूरी इच्छाएं अपने जीवन में एक दूसरे की नकल करके देखा देखी पाल ली है। जीवन जीने के लिए हम चीजें इकट्ठी नहीं करते, जीवन जीने के लिए हम पैसा नहीं कमाते। हमारा उद्देश्य देखा देखी करके जो इच्छाएं हमने पाल ली हैं उनको पूरा करना होता है, परेशान उसके कारण है। तो उसका रास्ता फिर सादगी से ही होकर जाता है। आप कुछ भी कह लिए, आपको आना वहीं पड़ेगा। घर का जो सामान है उठा के नहीं फेंक दोगे आप, जो घर में आप ही नहीं हो, चार मेंबर और भी हैं, तो उनकी इच्छाओं के अनुसार भी तो सामान होगा घर में। तो हो सकता है मेरे अंदर तो इच्छा आ गई कि मैं अध्यात्म मार्ग पर चलूंगा, मेरी बात समझ में आ गई, उनकी तो समझ में नहीं आई। तो मैंने सादा बनना है, मैं उन पर प्रेशर थोड़ा डालूंगा। हाँ, मेरे अपने हैं, कहीं उनका नुकसान हो रहा है, मैं केवल एक समझाने की कोशिश कर सकता हूं, इतना तो मेरा रोल है, बनता है, बस। उनको मैं प्रेस नहीं कर सकता। इसीलिए इच्छाओं के त्याग के लिए मैंने तप करना ही पड़ता है। वो चाहे जो करते रहें, लेकिन मैंने जो है वो मर्यादा में ही चीजें इकट्ठी करनी होती है, मर्यादा में ही उनका भोग करना होता है, और मर्यादा में ही मैं उन चीजों को इकट्ठे करने के लिए कमाई करता हूं, परिश्रम करता हूं। तब जाकर मेरे अंदर कुछ साहस पैदा होता है कि मैं इस मार्ग पर चल सकता हूं। समय बचता है आपके पास, पढ़ने के लिए भी समय बचता है आपके पास, साधना के लिए भी समय बचता है आपके पास, ये तो सारा काम तो वहीं खत्म हो जाएगा आपका। गृहस्थ जीवन देखा नहीं कितने काम होते हैं, महिलाओं को देख लिए कितने काम होते हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक लगी रहती हैं बेचारी, कुछ तो मजबूरी में लगी रहती हैं। जैसे मान लिया 6 महीने का बालक है, उसको पालना तो मजबूरी है, वो तो आपका कोई नियम फॉलो करता नहीं है, कुछ तो मजबूरी में होती हैं, कुछ हम अपनी वासना के कारण फंसे रहते हैं। तो जहां मैं अपनी वासना के कारण फंसा हुआ हूं, वहां वहां मैंने कट ऑफ करना होता है, और समय और शक्ति बचानी होती है। दूसरी बात महाजी कह रहे हैं सत्य की, तो सत्य का मतलब एक ही है कि सत्य केवल एक परमेश्वर है। सत्य किसे कहते हैं अध्यात्म में? जिसमें कभी भी परिवर्तन संभव नहीं है। जिसमें परिवर्तन नहीं है, इसलिए ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना वो दुखदायी होता है, वो स्थायी होता है। एक ईश्वर पर भरोसा करना कि सारी सृष्टि का सत्य वो एक ईश्वर ही है, उसके कारण ही सारा ये सृष्टि का विधान चल रहा है, तो मैंने उस पर विश्वास करना सीखना है, उसके लिए जीना है, और इसलिए मैंने सत्य का पालन भी करना है। मैं झूठ का आश्रय ले लेता हूं, क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा लोगों पर होता है, ईश्वर पर भरोसा नहीं होता। सारी चालाकियां मैं करता रहता हूं, अंदर से भयभीत भी रहता हूं कि अरे ये व्यक्ति मेरा कुछ बिगाड़ ना दे, इसको दूसरे खुश करने की कोशिश करते हैं, शायद ये मेरा काम बना देगा। अर्थात भरोसा हमारा ईश्वर पर नहीं होता, भरोसा लोगों पर होता है और अपनी टेक्निक पर होता है, अपनी होशियारी अपनी चालाकी पर होता है। तो जब मनुष्य को ईश्वर के जो नियम है, ईश्वर के जो सिद्धांत है, उस पर जब विश्वास होता है, जैसे कि प्रारब्ध का एक सिद्धांत है कि जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है, उसकी जन्म कुंडली उसको हाथ की रेखाओं के रूप में या जन्म पत्री के रूप में, जो साइंस के ज्ञाता हैं वो जानते हैं इस बात को कि जन्म कुंडली उसको साथ लेकर भेजा जाता है संसार। अब सारा जीवन उसका उसके अनुसार चलना है, चाहे कितने कितने बड़े ज्योतिषी आपको गारंटी दे दें, उपाय बता दें, तुम ऐसा कर लेना ऐसा हो जाएगा, किसी की नहीं चलनी। जो होना है आपके जीवन में वही होगा, इसलिए उसका विश्वास केवल ईश्वर पर रहता है। तो ये सारी बातें सत्य के अंदर आती हैं। तो इसीलिए वो केवल ईश्वर पर भरोसा रखकर इस सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। अंदर से अटल विश्वास होता है कि जो करना है ईश्वर ने ही करना है, किसी मनुष्य को ताकत उसने दी ही नहीं, यदि किसी के अंदर ताकत नजर आ रही है तो ये उसकी दी हुई है। यदि किसी चोर से मुझको खतरा है, मेरे घर चोरी कर लेगा, और यदि वो चोरी कर लेता है तो ये चोरी करने की ताकत और ये उसको सफलता मिलने की ताकत ये ईश्वर ने ही दी हुई है, क्योंकि मेरे घर की चोरी उसने प्रभु ने उसके द्वारा करवानी है मेरा कर्मफल देने के लिए। ये विश्वास होता है आंतरिक उस व्यक्ति का। वो किसी पर दोषारोपण नहीं करता कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये संसारी लोगों का काम है, लेकिन जो भक्त है, जो ईश्वर विश्वासी है, उसके अंदर प्रभु का जो सिद्धांत है, प्रभु का जो विधि का विधान है, उसका पक्का विश्वास होता है। तो ये सारी बातें सत्य के अंतर्गत आती है। तीसरा महाजी ने कहा है अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए सेवा। सेवा क्यों? सेवा इसलिए क्योंकि जितने भी हम स्वार्थ कर्म करते हैं, मोटी सी परिभाषा कहें तो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, या मेरे से संबंध जिनका है, जैसे परिवार है, परिवार मेरे शरीर का अंगी तो है, वो मेरे शरीर का ही एक्सटेंशन है, वो अलग चीज नहीं है। मैं इस शरीर से वासना पूरी करता हूं, परिवार के लोगों के शरीर के द्वारा भी वासना पूरी करता हूं। तो इसीलिए मैं जितनी भी अपनी या अपने परिवार की इच्छाएं पूरी करने के लिए जो कुछ भी पुरुषार्थ करता हूं, इस सब का नाम है स्वार्थ। तो ये स्वार्थ मेरा इतना बढ़ जाता है और मेरी ऐसी आदतें बना लेता है कि मैं हर काम जो करना चाहता हूं वो इच्छा पूर्ति के लिए ही करना चाहता हूं। इसके मुकाबले में सत्पुरुष आपको सिद्धांत दे रहा है सेवा का। कर्म तो मैं करूंगा ना, कर्म के बिना तो रहूंगा नहीं, तो सेवा का सिद्धांत क्यों दे रहा है? ताकि तेरे अंदर जो स्वार्थ कर्म करने की आदत बनी हुई है, इस आदत के मुकाबले में दूसरे का दुख दूर करने के लिए, दूसरे का कष्ट निवारण करने के लिए, दूसरे की सहायता करने के लिए तेरा कर्म हो, सोचने की आदत हो। तो स्वार्थ से बचने के लिए मनुष्य को सेवा का सूत्र अपनाना पड़ता है, ताकि स्वार्थ के लिए रात दिन जो मैं सोचता हूं कर्म करने की, इसके मुकाबले में मैं परमार्थ कर्म करने की कोशिश करता हूं, सेवा कर्म करने की कोशिश करता हूं। इसीलिए उसका नाम रखा गया निष्काम सेवा। सेवा जो करते हो वो कामना पूर्ति के लिए दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। कभी यह दिमाग में नहीं आना चाहिए जिसकी सेवा कर रहा हूं कभी भविष्य में ये मेरे काम आएगा। यदि ये भाव आपके अंदर आ गया तो वो फिर निष्काम सेवा नहीं है, तो स्वार्थ सेवा ये कि भविष्य के लिए तूने जो है भविष्य को नजर में रखकर भी सेवा कर रहा तू। तो अब बताइए कि बिना सेवा करे हुए आपके अंदर जो स्वार्थ कर्म करने की आदत है, इसमें बदलाव हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई आदमी कोशिश करे केवल सेवन से मैं पार हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। आदत तो तेरा स्वार्थ जीवन जीने की है, सेवन से कैसे पार हो जाएगा? तो ये पांच नियम पूरा पैकेज है। ये तो हमारी चालाकी होशियारी काम नहीं कर सकती। हम जहां खड़े हुए हैं वहां हमने ये सीखना ही होगा कि गुरु क्या कह रहा है और गुरु क्यों कह रहा है। इसलिए महाजी ने पांच नियम पर पांच चैप्टर लिखे संत रविदास। पूरा चैप्टर लिखने की महाजी क्या जरूरत थी? पूरा विज्ञान उसमें लिखा हुआ है, उसको बारीकी से अध्ययन करें, अपने लिए, सुनाने के लिए नहीं, अपने लिए अध्ययन करें, तो वहां पर आपको उसकी गंभीरता पता लगेगी। नहीं, गुरु ये बात क्यों कह रहा है? जिस नियम से भी मैं बचने की कोशिश करूंगा और अपना जस्टिफिकेशन खुद ही तैयार कर लूंगा अपने लिए, वही मात खा जाऊंगा। तो ये जो सेवा का सिद्धांत है, बिना से गुजारा नहीं होता ऐसा। इसीलिए जहां भी सेवा का मौका मिलता है आदमी को बड़ा अलर्ट होकर सेवा करना चाहिए। प्रभु का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रभु तूने इस घोर कलयुग में स्वार्थी जीवन में मुझे मौका दिया है सेवा का। कुछ लोग तो ऐसे गृहस्थ में फंसे होते ना, सुबह से शाम तक कहते हैं साहब कमाई करने में ही फुर्सत नहीं मिलती, बच्चों का पेट पालन ही नहीं कर पाते, उनकी भूख भी नहीं मिटा पाते, जिसके बेसिक खर्चे भी नहीं चल रहे हैं, तो वो बेचारा सुबह से शाम तक बच्चों के लिए सोचेगा क्या करेगा। लेकिन किसी को ऐसा मौका दिया कि घर में खाने पीने की तंगी नहीं है, पहनने की तंगी नहीं है, रहने की तंगी नहीं है, उसको सेवा का अवसर मिल जाए यदि किसी भी प्रकार से, किसी भी बहाने से, मान लिया जैसे बरेली में सम्मेलन होता है, अब सम्मेलन में सब लोग अपना अपना वक्त निकालते हैं, स्वार्थ में सभी बिजी हैं। मान लिया किसी ने 3 दिन का वक्त निकाल लिया और 3 दिन उसने सेवा की, तो मन में तो ये रहता है कि ये काम है, ईश्वर का काम है, कर रहा हूं मैं। तो बताइए ये जो उसको मौका मिला है, ये ईश्वर ने दिया है या नहीं दिया है? सम्मेलन जो हो रहा है वो तो ईश्वर का कर्म हो रहा ना, तो निष्काम सेवा करने का आपको एक मौका ईश्वर ने दिया है, उस मौके का उपयोग यदि आप निष्काम कर्म करने में कर सकते हो तो आपको ईश्वर की याद आएगी। तो सेवा का जहां आपको मौका मिले, नहीं इसी प्रकार आपके सामने कोई दुखी जीव आ जाए, कोई गरीबी आ जाए, चांस की बात है, कोई प्रोग्राम बना के नहीं आता, कहीं भी आपको पता लग जाए इस बेचारे के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, नहीं। तो जो आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार यदि उसका कष्ट आप निवारण इसलिए करते हैं कि प्रभु ने कहा है, गुरु ने कहा है कि बिना सेवा के स्वार्थ से छुटकारा पाना संभव नहीं है, तो आप अपने ही स्वार्थ से छुटकारा पाने के लिए जो सेवा का मौका मिला है उसको निष्काम रूप में उस व्यक्ति का दुख निवारण करने की कोशिश करते हो, जो आपकी सामर्थ्य, वस्त्र देने की सामर्थ्य वस्त्र से करते हो, शरीर से कोई सहायता उसकी जरूरत है शरीर से सहायता कर देते हो, पैसा यदि आपके पास है तो पैसे से उसकी मदद कर देते हो, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है, प्रभु ने आपको कला दे रखी है, आप रोग का इलाज करना जानते हो तो वही उसको ठीक प्रकार से एडवाइस कर देते हो, तो तन मन धन तीनों से आप जो भी संभव है आप उसकी सेवा कर देते हो, और भाव पीछे आपका ये रहता है कि देखो प्रभु का धन्यवाद, उसने आज मुझे सेवा का मौका दिया, मैं इसका दुख निवारण करने वाला कोई नहीं हूं, इसकी सहायता तो बिना प्रभु के हुक्म के हो ही नहीं सकती, उसके प्रारब्ध में होगा तो उसकी सहायता होगी ना, लेकिन मेरे हाथों से सहायता हो रही है इसका मतलब प्रभु ने अपने काम के लिए मुझे सिलेक्ट किया है। देखो आपके अंदर भाव क्या आना चाहिए, भाव यह आना चाहिए कि प्रभु ने अपने काम के लिए मुझे सिलेक्ट किया है, तो जिसका सिलेक्शन प्रभु ने किया हो अपने काम के लिए वो भाग्यशाली नहीं है क्या? तो सेवा इस भाव से होती है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ना चंचलता होगी, उसके अंदर गंभीर बुद्धि होगी, जो इतना अलर्ट होगा उसके अंदर गंभीर बुद्धि होगी, उसके अंदर जो है वो बच्चों वाली चंचलता नहीं होती। चौथा सूत्र महाराज जी दे रहे हैं सत्संग का, विचार हम हर समय करते रहते हैं, हमको पता है जिस जब तक हम होश में हैं हमारी आंख खुली हुई है बिना विचार किए हुए एक सेकंड भी हमारा नहीं बीतता, निरंतर नॉन स्टॉप मन के अंदर विचार चलता ही रहता है, तो इस विचार, इस स्वार्थ वाले विचार के तुलना में मेरे अंदर चलना चाहिए ईश्वर का विचार, इसको कहते हैं सत विचार। तो ईश्वर का विचार क्या होता है कि संसार कैसे दुख रूप है इसका चिंतन करता हूं मैं, और इस दुख से बचने के लिए ईश्वर के मार्ग पर मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं इसकी जरूरत होती है विचार की। इसके लिए आप सत्संग भी श्रवण करते हो, किसी भक्त का संग भी करते हो, उसकी संगत भी काम आती है, और सत्पुरुषों के जो ग्रंथ हैं या उनके जो वचन हैं उनका स्वाध्याय भी करते हो। सांसारिक सोच छोड़कर अपना टाइम इस सोच में आप लगाने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे जब प्रोग्राम बना के ये काम करते हो आप, तो आपको जितने भी डिफेक्टिव विचार हैं ये संसार के, इनसे धीरे धीरे मुक्ति मिलती है। और जो सत विचार हैं ये आपके मन के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं और बुद्धि का निर्णय आपका बदल जाता है। फिर ये जीवन जो आप गृहस्थ को पार लगाने के लिए व्यतीत करते हो, लोगों के काम करने के लिए व्यतीत करते हो, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए व्यतीत करते हो, इसके मुकाबले में इसको आप, इस कर्म को आप बंधन रूप जानकर आप ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए आप ये स्वाध्याय करते हो, सत्संग श्रवण करते हो। तो ये विचार 24 घंटे की चीज है। ये केवल इसलिए नहीं है कि मैं आश्रम में गया, एक घंटे सत्संग सुन आया, या एक घंटा मैंने स्वाध्याय कर लिया, बस मन में सोच लिया मेरा नियम पूरा हो गया। ये नियम वाली बात नहीं है। आपने अपने मन को देखना है कि मेरे दिन भर मन में क्या चलता रहा, मेरे मन में क्या चलता रहा, ये आपने सुबह से शाम तक अपने मन को देखना है कि संसार की बातें चल रही हैं इसमें या करतार की बातें चल रही हैं। हर व्यक्ति देख सकता है इसमें क्या बात। तो ये जो सत विचार है ये भी जब तक आप होश में हैं, नहीं सो रहे हैं, ये कंटिन्यूस मन में सत विचार चलता है। घर के पैसा कमाने के लिए, घर के काम करने के लिए आप लगातार चिंतन करते नहीं करते हो, वेज एंड मीन्स तलाश करते रहते हो। उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए भी आप तरीके सोचते हो, कहाँ मैं फेल हो रहा हूँ, क्यों मैं अपनी आदत में सुधार नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा खान पान अभी तक जो है क्यों नहीं सुधरा है। विचार खान पान का हो रहा है लेकिन उसका संबंध ईश्वर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप ये अपने आप खान पान पर कंट्रोल क्यों करना चाहते हो, क्योंकि ये आपकी ईश्वर प्राप्ति में बाधक बन रहा है, आपकी साधना में बाधक बन रहा है। तो बात तो खान पान की हो रही है, आगे मन में चल रहा है, लेकिन उसका लिंक जो है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। और नहीं जुड़ा हुआ है तो लिंक आपके स्वादों से जुड़ा होगा, आपकी इच्छाओं से जुड़ा होगा। मन में वही खाने पीने की बात चल रही है, उसी की प्लानिंग चल रही है, लेकिन उसके रिजल्ट में कितना बड़ा अंतर है। एक खाने पीने का विचार आपको ईश्वर से जुड़ रहा है, एक खाने पीने का विचार आपको वासना से जुड़ रहा है। तो जो खाने पीने की याद वासना करके कर रहा है, आज तो कहीं दावत है, सुबह से याद कर रहा है आज शाम को दावत खाने जाना है, उस मौज आएगी, तो वासना गहरी होगी इसकी, खाने पीने की वासना गहरी होगी। तो सोचो तो सही, मैंने एक घंटा तो ईश्वर की याद करी और आठ घंटे खाने पीने का भजन किया, तो संस्कार मेरे ईश्वर के बनेंगे या खाने पीने के बनेंगे। इसीलिए साधना 24 घंटे की चीज है, ये सुबह शाम की नहीं होती साधना। 24 घंटे की चीज, इसीलिए ये सारा का सारा विचार पांच नियम का नहीं चलते। ये चार नियम पे आपका जीवन चलता है, तब पांचवा नियम में आपका मन लगता है, सिमरन में मन आता तब लगता है। जब दैनिक जीवन जो है आपका वो चार नियम पर दिन भर चलता है, दिन भर चलता है, तब ये पांचवें नियम में आप टिक पाते। नहीं तो 20 साल करते रहो सिमरन, शिकायत करते रहोगे क्या करूं, ना मन की बेचैनी कम हो रही है, ना मन के शौक कम हो रहे हैं, नहीं, ना मानसिक क्लेश से मुक्ति मिल रही है, सिमरन करने बैठता हूं मन मेरा संसार में लगा रहता है, नियम मैं पूरा पालन करता हूं, दो घंटे सुबह भी बैठता हूं, दो घंटे शाम को भी बैठता हूं। तो सिमरन आप क्यों कर रहे हो, वो भी तो याद करना पड़ेगा आपको। सिमरन किस वास्ते है? बुद्धि को यानी जीव को मन से आजाद करने के लिए सिमरन है। जीव को मन से मुक्त करने के लिए सिमरन है। और जिस मन में आप दिन भर संसार की बातें सोच रहे हो, स्वार्थ की बातें सोच रहे हो, तो ये मन आपका बंधन, मन का बंधन तैयार कर रहे हो या मुक्ति का साधन तैयार कर रहे हो? इसीलिए जो सत्पुरुषों का निर्णय है कि सारा संसार दुख रूप है, इस निर्णय को जब तक आपने समझने की कोशिश नहीं की है, तब तक आप इस मन से मुक्त होने के लिए ईश्वर सिमरन क्यों करोगे? तो मन का हर संकल्प, मन की हर इच्छा जीव के लिए बंधन है। इसलिए महाजी ने कहा, जब तक मन में एक इच्छा भी बाकी है, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। यह इनके अनुभव की बात है। चले ईश्वर प्राप्ति करने के लिए मन की हालत पता ही नहीं है, वहां देखी नहीं क्या हो रहा है। तब आपको पता लगेगा कि ये मार्ग छोटा हो ही नहीं सकता। आजकल के मॉडर्न गुरु मिल जाते ना, कहते मैं तो ये पार लगा दूंगा। तो पूर्ण गुरु की बात जब समझोगे, शास्त्र की बात जब समझोगे, तब आपको पता लग जाएगा ये रास्ता ही कई जन्म का है। जिन सत्पुरुषों ने इस जन्म में, वर्तमान जन्म में ईश्वर प्राप्त की है, तो वो खुद कहते आए हैं कि इनकी ये कमाई पिछले जन्म की है, इसीलिए इस जन्म में रेडीमेड चीज मिल गई, सारी आदतें सुधरी हुई थी बचपन से ही, संसारी भोग विलास में उनकी वासना ही नहीं थी। ईश्वर प्राप्ति की तड़प बचपन से ही थी उनके अंदर। जहां ईश्वर की याद की तुरंत मन लग जाता था, उसके मुकाबले में संसारी किसी बात में मन ही नहीं लगता था उनका। ये उनका स्वभाव बचपन से ही होता है। तो ये स्वभाव पिछले जन्म में लेके आए होंगे ना, करके आए होंगे ना। तो इस जन्म में मैंने ईश्वर वाला स्वभाव बनाना है, मैंने निर्माण करना है। वो कहीं से कृपा के रूप में स्वभाव प्राप्त नहीं होने वाला आपको, वो आपने उसका निर्माण करना है। तो ये जो स्वभाव का जो बदलाव है, ये तभी संभव है जब इन पांच नियम के पालन में हम तप करना सीखें। हर नियम का पालन तप मानता है। इसीलिए गीता में कहा गया कि प्रारंभ में इस मार्ग पर जो चलता है उसको ये मार्ग विष रूप नजर आता है, परंतु परिणाम में ये मार्ग अमृत रूप है। क्योंकि जो संसारी मार्ग है ना, उसमें तमोगुणी सुख है और रजोगुणी सुख है। पापी लोग पाप करके कितना खुश होते हैं, देखा नहीं आपने? जो पापी लोग हैं पाप करके कितना खुश होते हैं। ऐसी भोगी लोग जो हैं, खूब पैसा कमा के खूब भोग विलास करके कितना खुश होते हैं। मजा आ गया, वाह ये चीज देखने को मिल गई, ये चीज भोगने को मिल गई। तो रजोगुणी तमोगुणी सुख और ये रजोगुणी सुख, ये दो में लोग जो है वो खुश होते हैं, उनके लिए अमृत रूप नजर आता है। लेकिन जो विचारवान है वो सतोगुणी सुख भोगता है। तो ये पांच नियम पे चलने का जो सुख है, ये सतोगुणी सुख है, ईश्वर भक्ति का सुख है, इसको गीता में सतोगुणी सुख कहा गया। तो सतोगुणी सुख यदि भोगना है तो रजोगुणी और तमोगुणी सुख का त्याग करना ही पड़ेगा, बिना उसके कैसे सतोगुणी सुख में आप प्रवेश करें। तो ये जो सतोगुणी सुख है, ये फिर आपको निर्गुण बना देता है, एक दिन गुणों से ऊपर ले जाता है। ईश्वर है गुणों से ऊपर, वो निर्गुण है। तो ये मार्ग छोटा कैसे हो सकता है? इसमें कोई चालाकी आपके काम नहीं कर सकता। आप 8 घंटे रोज सिमरन कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला, जब तक स्वभाव बदलने को तैयार नहीं। स्वभाव आपका सतोगुणी होना ही चाहिए, तभी तो उसके बाद निर्गुण हो गया। आपने सतोगुणी भी नहीं रहना, क्योंकि ईश्वर मन इंद्रियों के अनुभव से ऊपर की चीज है, और गुण होते हैं मन के अंतर्गत। मन से ऊपर आपने जाना ही जाना है। ये रास्ता छोटा हो ही नहीं सकता। आप अपने स्वभाव को देखते रहिए कि आपने कहां कहां गलतियां की हैं। मान लिया आप 10 साल से साधना कर रहे हैं, तो 10 साल की कमियों को देखिए, आपने क्या क्या गलतियां की। खुद आभास हो जाएगा कि मैंने बहुत गलतियां की, काश मैं यदि गुरु के कहने के अनुसार सादगी से एक सिस्टमेटिक तरीके से चला होता तो आज मैं कहां पहुंच गया होता, मेरा स्वभाव कैसा होता, खुद आपको पता लग जाएगा। जो गलतियां मैंने की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये मेरी लापरवाही रही ना, तो उसकी सजा यही है कि सिमरन करने बैठता हूं मन नहीं लगता, सजा यही है। सही चलने वाले के लिए ये मार्ग कठिन नहीं है, उसी प्रकार कठिन नहीं है किसी ने यहां से बॉम्बे जाना हो और मान लिया ज्यादा नहीं 1 किलोमीटर रोज भी चलता है वो, तो पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा बॉम्बे। 1 किलोमीटर चलना कठिन नहीं है, तो तूने छोटे छोटे स्टेप में यात्रा करनी है, लेकिन लगातार यात्रा करनी है। तू करता क्या है, 10 कदम आगे जाता है, 8 कदम पीछे आता है, फिर 10 कदम आगे आता है, फिर 8 कदम पीछे आता है, या कई बार ऐसा भी होता है 10 कदम आगे आता है 12 कदम पीछे आ जाता है। आगे कहाँ जाना है तुम्हें, इसके लिए बड़ी जागरूकता चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, इसमें जंपिंग काम नहीं करती इसके अंदर, कभी बहुत जोर मार लिया कभी बिल्कुल ढीले पड़ गए, क्योंकि ये स्वभाव का परिवर्तन है। मैं तमोगुणी रजोगुणी स्वभाव लेकर घूम रहा हूं, मैंने सतोगुणी स्वभाव बनाना है। इसीलिए 5 नियम का जब मैं ईमानदारी से पालन करूंगा, इसके लिए मैं सेक्रीफाइस करूंगा, अपनी इच्छाओं का दमन करूंगा, तभी आपके अंदर हिम्मत आएगी, अब बढ़ चलोगे। 5 साल भी आप ईमानदारी से चल दिए तो आपका स्वभाव ऐसा बन जाएगा, फिर आप रुक ही नहीं सकते, फिर कोई रोक ही नहीं सकता आप, क्योंकि 5 साल की सतत प्रक्रिया चाहिए। बिल्कुल। और इस मार्ग पर जो बढ़ गया, इसमें फिर आराम ही आराम है। आराम इस सेंस में कम कमाई से गुजारा हो जाता है, कम वस्तुओं में गुजारा हो जाता है, कम संसार में समय खर्च करके गुजारा हो जाता है, ना किसी के प्रति आपके मन में ईर्ष्या द्वेष रहता है, ना किसी के प्रति आपके अंदर क्रोध भावना रहती है, ना किसी के प्रति आपके अंदर बदले की भावना रहती है। हर चीज के अंदर, हर चीज के लिए आप ईश्वर पर डिपेंड करते हो कि प्रभु ने जो करना है वो करेगा, नहीं मैं क्यों चिंता करूं। तो अंदर से इतना मानसिक सुकून रहता है और एक उमंग रहती है। उमंग किसी बात की, कि मैं सत मार्ग पर चल रहा हूं, निरंतर मेरी प्रगति हो रही है, जेब में 2 पैसे भी नहीं है, मैं गरीब नहीं हूं, फिर भी मैं सत्पुरुषों की तरह फिर अमीर हूं। महाजी की जेब में तो 1 रुपया भी नहीं होता था, लेकिन उनके मुकाबले की अमीरी किसी के पास है आज भी, सोचो जरा। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो तो शहंशाह है। कमी हमारी यही है कि ये 5 नियम का पालन हम उस तरीके से नहीं करते, उसको समझने की कोशिश भी नहीं करते, जैसा संत विलास ने, गुरुदेव ने लिखकर छोड़ दिया। कठिन चीजें पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं, सरल चीजें पढ़ने की समझने की कोशिश नहीं करते गंभीरता से, इसलिए बार बार मात खाते हैं। इनको चीजों को समझना चाहिए और पालन करना चाहिए।